الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمير أهل سنت سے میاں بیوی کے بارے میں سوال جواب فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک بیوی کا واقعہ۔ سوال، نیک بیوی کا کوئی واقعہ سنا دیجئے۔ جواب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، ایک بار آپ کو حضر موت سے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے تو رات بھر بے چین رہے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، میں رات سے فکر مند ہوں کہ وہ شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا جو اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے گھر میں یہ مال موجود ہو۔ سعادت مند بیوی نے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر یہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیجئے۔ نیک بخت بیوی کی یہ تجویز سن کر آپ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی ان زوجہ محترمہ کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے، جو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اللہ اکبر، ہمارے صحابہ کرام علیم رضوان کی سخاوتیں ایسی تھیں، ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو خوشی کے مارے بے چین ہو جائیں، جبکہ ان حضرات کے پاس جب دولت آتی تو صدمے کے مارے ان کی حالت مضطرب ہو جاتی کہ یہ دولت کہاں سے آ ٹپکی، اب میں اس کا کیا کروں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ماشاء اللہ کیسی نیک عورت تھیں، وہ دور ہی نیکوں کا دور تھا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا میاں بیوی جنت میں یکجا ہوں گے؟ سوال، کیا میاں بیوی دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے؟ جواب، جی ہاں، اگر میاں بیوی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اگر ان میں سے کسی کا معاذ اللہ ایمان سلامت نہ رہا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو جنت میں جائے گا اس کا کسی دوسرے جنتی سے نکاح ہو جائے گا۔ اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کیجئے۔ سوال، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم زن مرید بن گئے ہو، اس کا کیا حل ہے؟ جواب، اگر کوئی شخص خوف خدا کے باعث اپنی زوجہ سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے یا اس سے نرم برتاؤ کرتا ہے اور لوگ اسے زن مرید ہونے کا طعنہ دیتے ہیں تو یقیناً یہ اس کی دل آزاری کا سبب ہوگا۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے، لوگوں کے کچھ بھی کہنے پر دل برداشتہ نہ ہو اور ہرگز اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائے، بلکہ مزید نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ فی زمانہ لوگوں کے انداز یکسر بدل چکے ہیں، خصوصاً اپنی زوجہ کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی ناگفتہ بے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی زوجہ سے معافی مانگنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، حالانکہ بیوی پر ظلم کیا ہو تو معافی مانگنا واجب ہے، उन्हें चाहिए कि अपनी जौजा से मुआफ़ी तलाफ़ी करते रहा करें। ये ज़रूरी नहीं कि जुल्म किया होगा तो ही मुआफ़ी मांगी जाएगी, बल्कि एहतियाती मुआफ़ी मांग ली जाए तब भी हर्ज नहीं, बल्कि एहतियाती मुआफ़ी मांगना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत में इजाफे का सबब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मामूल है, मैं एहतियाती मुआफ़ी मांगता रहता हूँ। जैसे कोई बड़ी रात या बड़ा दिन आता है तो मैं मुआफ़ी तलाफ़ी की तरकीब बना लेता हूँ। इससे हरगिज़ किसी की शान में कमी नहीं आती और ना ही किसी की इज्जत कम होती है। सवाल, क्या बीवी शौहर की झूठी चाय पी सकती है? जवाब, दोनों एक दूसरे का झूठा पी सकते हैं। सवाल, आजकल घर में इंटरनेट सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मियाँ बीवी में तरह तरह के मसाइल बल्कि तलाक तक हो जाने की इत्तिलात हैं, कोई हल इरशाद फरमा दीजिए। जवाब, इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल में अपनी और घर की बर्बादी है, लिहाजा घर चलाने के लिए मियाँ बीवी को इसके ज़्यादा इस्तेमाल से बचना होगा। अगर बीवी नेट इस्तेमाल कर रही हो और उसी वक्त उसे शौहर कहे कि मुझे चाय बनाकर दे दो, तो उसे चाहिए कि लब्बैक कहती हुई उठे और हाथों हाथ चाय बनाकर पेश कर दे। अगर उस वक्त नहीं उठेगी तो घर कैसे चलेगा? बीवी को शौहर की इताअत करनी चाहिए। अगर बीवी शौहर की इताअत नहीं करेगी तो आपस में मुंह मारी होती रहेगी। औरत सामने से जवाब देगी तो फिर दुनिया की बर्बादी के साथ आखिरत की तबाहकारी भी होगी। हर फरीक सामने वाले की गलतियां साबित करने की कोशिश करेगा, झूठ, गीबत, तोहमत और दीगर गुनाहों के दरवाजे खुलेंगे। मसलन बीवी कहेगी कि मुझे मार पीट करके जुल्म करता है, खाना और खर्ची नहीं देता। जवाब में शौहर की तरफ से भी इल्जामात की बूछाड़ होगी और इस जंग का नतीजा माद अल्लाह तलाक या जुदाई पर होगा। बस अल्लाह पाक मुसलमानों पर रहम फरमाए। सवाल, बाज़ लोग मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवाने के लिए अमलियात करवाते हैं। अगर बीवी पर इस जादू के असरात हों जिसके बाइस शौहर के घर आने पर उसका सांस बंद होने लगे, तो इस मसले का क्या हल किया जाए? जवाब, अमलियात करने वाले मियाँ बीवी में जुदाई डलवाने के लिए भी अमलियात करते हैं, मगर ये बात साबित किस तरह होगी कि किसी ने इस पर कुछ करवाया है या फुना रिश्तेदार ने करवाया है? बाज़ आमिल जादू करवाने वाले के बारे में कुछ इशारा दे देते हैं या उसके नाम का पहला हर्फ बता देते हैं। अब अगर इत्तेफाक से किसी रिश्तेदार का नाम उसी हर्फ से शुरू होता हो तो उसके बारे में बदगुमानी की जाती है कि यही जादू करवाने वाला है, हालांकि उस बेचारे को पता भी नहीं होता। तो यूं आमिल आपस में लड़वा देते हैं। शौहर के घर बीवी की सांस रुकती है तो जब तक शरई सबूत ना हो, किसी के बारे में ये कहना मुश्किल है कि फुला रिश्तेदार अमल करवा कर जुदाई डलवा रहा है। बाबा जी का कह देना शरई सबूत नहीं कहलाता। बीवी जब भी शौहर के घर जाती है, बेचारी का सांस रुकने लगता है, तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है, नफसियाती असर भी हो सकता है। जबकि जहन में ये बात बैठ गई हो कि शौहर के घर जाऊंगी तो मेरा सांस रुकेगा, क्योंकि फुला दिन भी सांस रुक गया था। हालांकि एक बार ऐसा हो जाना बार बार ऐसा होने की दलील नहीं। मुमकिन है उस दिन कहीं से सीढ़ियां चढ़कर थकी हारी शोहर के घर गई हो, जिसकी वजह से सांस फूल गया हो और इत्तेफाक से रुकने लगा हो। तो इस वाक़े को दलील बनाकर ये कह रही है कि शोहर के घर मेरा सांस रुकता है। याद रखिए, नफ्सियाती असर के बड़े असरात होते हैं और बंदे को ऐसा लगता है कि उसके साथ यूं होता है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। सवाल, अगर औरत अपने शौहर से 5 या 6 माह अलग रहती हो तो क्या इससे निकाह पर कोई फर्क पड़ेगा? नीज अगर शौहर की रिजा के बगैर अलग रहती हो तो क्या हुक्म है? जवाब, औरत अपने शौहर से अलग रहती हो तो इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नीज अगर औरत शौहर की रिजा के बगैर अलग रहती हो तब भी निकाह नहीं टूटेगा। अलबत्ता गुनाहगार होना अलग बात है। अगर शौहर जुल्म करता है इस वजह से अलग रहती है तो फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करना चाहिए ताकि सूरत हाल बताकर तय हो कि वो क्यों शौहर से अलग रह रही है, मगर इससे निकाह नहीं टूटेगा। सवाल, क्या बीवी शौहर से पहले बेअत हो सकती है? जवाब, जी हाँ हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। सवाल, मियाँ बीवी के दरमियान ना चाकी ना इत्तेफाकी और लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसका क्या हल है? जवाब, ताली दो हाथ से बजती है। अगर मियाँ को कहें कि तुम मुआफ़ी मांगो तो वो कहेगा कि मैं क्यों मुआफ़ी मांगूँ, ये मुंह फट है। अगर बीवी से कहें कि तुम मुआफ़ी मांगो तो वो बोलेगी कि मैं क्यों मांगूँ, इसने मुझे ऐसा बोला था। इसलिए अगर दोनों थोड़ा थोड़ा झुक जाएं तो मसअला हल हो जाएगा। अलबत्ता सही बात यह है कि कुरान करीम में है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, पारा 5 सूरह निसा आयत नंबर 34, तर्जमाए कंजुल ईमान, मर्द अफसर हैं औरतों पर। तो मर्द औरत पर हाकिम है, इसलिए औरत मर्द की इताअत करेगी, मर्द औरत की इताअत नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द जुल्म करता मार धार करता और झाड़ता रहे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मर्द जुल्म करेगा तो उसे औरत से मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर अड़ी करेगा कि मैं औरत से मुआफ़ी मांगूं, बीवी से मुआफ़ी मांगूं, मैं मांगूं, लोग क्या कहेंगे? तो याद रहे कि अगर आखिरत में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि इसे जहन्नम में ले जाओ तो फिर क्या करेंगे? इसी तरह अगर औरत ज़बान दराजी करेगी, बोलती चली जाएगी, जबान निकालती रहेगी और बर्तनों की तोड़ फोड़ मचाएगी तो फिर उसे मुआफ़ी मांगनी होगी। जिसने भी जुल्म किया हो उसे मुआफ़ी के साथ साथ तौबा भी करनी होगी। आम तौर पर जहनी हम आहंगी का फुकदान होता है जो बरसों तक चलता है, फिर एक दूसरे की पहचान हो जाती है, बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तब उमूमन झगड़े वगैरह कम हो जाते हैं। बहरहाल लड़ना नहीं चाहिए। गुजराती की कहावत है, नमियों ते अल्लाह ने गमियों, यानी जो झुकता है वो अल्लाह को पसंद आता है। कसूर ना भी हो तो मुस्कुराकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने में भी बाज़ औक़ात अंदाज अड़ी वाला होता है कि ए माफ़ करती है कि नहीं, कितनी बार माफ़ी मांगूँ, पाँव पड़ूँ तेरे, नहीं पढ़ूँगा, माफ़ करती है तो कर, नहीं तो जा अपनी माँ के पास। ये माफ़ी का तरीका नहीं है। अगर भूल हो जाए तो आजजी, इनकिसारी, खुश दिली और अच्छे जहन से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इंशा अल्लाहुल करीम दिल साफ हो जाएगा। हंस बोल कर जिंदगी गुजारेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, घर भी आबाद होगा और बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। वरना अगर आए दिन जंगे अजीम छिड़ती रही और बोला बोली होती रही तो बच्चे भी बोला बोली देख कर मारा मारी सीख जाएंगे। इसलिए बच्चों पर भी रहम किया जाए। लड़ाई लड़ाई मुआफ़ करो, अपना दिल साफ करो और मुआफ़ करना इख्तियार करो। मुआफ़ करना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने अपने खून के प्यासों को भी फतेह मक्का के मौके पर मुआफ़ी अता फरमाई थी। कुरान करीम में भी अल्लाह पाक ने आपसे फरमाया, खुदिल अफ़, पारा 9 सूरह आराफ आयत 199, तर्जमाए कंजुल ईमान, ए महबूब मुआफ़ करना इख्तियार करो। हमेशा याद रखें कि जब भी मुआफ़ी मांगने का मौका आएगा तो आपके सामने शैतान आएगा कि तूने मुआफ़ी मांगी, तो सामने वाला सर पर चढ़ जाएगा कि देखा कसूर किया था, जब भी तो मुआफ़ी मांगी, मैं हूँ ही मजलूम और बेकसूर। इस तरह के वसवसे आएंगे, लेकिन आपने शैतान को भगाना है क्योंकि माफ़ी मांगने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। मेरा मशवरा है कि जब एक पार्टी मुआफ़ी मांगे तो दूसरी भी मुआफ़ी मांग ले, बल्कि दूसरी पार्टी पहली पार्टी से ज़्यादा मुआफ़ी मांगे। अगर पहली वाली ने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी है तो दूसरी वाली पांव छूकर मुआफ़ी मांग ले, इंशाअल्लाहुल करीम अच्छी तरह दिल साफ़ हो जाएगा। अल्लाह करीम हमारे घरों को अमन का गहवारा बनाए। सवाल, घर में झगड़े ख़त्म करने और खुशगवार मोहब्बत भरा माहौल बनाने के लिए मियाँ बीवी क्या कर सकते हैं? जवाब, एक दूसरे के सामने मुस्कुराते रहें, कभी मुंह ना फुलाएं। जब भी शौहर घर आए, बीवी भाग कर दरवाज़ा खोले और मुस्कुराकर मरहबा या वेलकम कहे, फिर पूछे कि पानी लाऊं, चाय लाऊं। अगर वो गुस्से में भरा हुआ घर आया था तो इस तरह की ऑफर यानी पेशकश से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शौहर को चाहिए कि कभी अपने हाथ से भी कोई काम कर लिया करे, जैसे एक आध प्याला धो दिया, पानी खुद उठकर भर लिया वगैरह। ऐसा करने से शौहर छोटे बाप का नहीं होगा, बल्कि बीवी की नज़र में इज्जत और बढ़ेगी और वो भागेगी, क्या आप रहने दें, मैं कर देती हूँ। इस बारे में मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह झगड़े नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके कि मेरी फिजिकल कंडीशन यानी जिस्मानी हालत अब ऐसी नहीं रही और कुर्सी से उठकर किसी चीज़ को उठाना या रखना मेरे लिए मुश्किल होता है, फिर भी जब खाना आता है तो मैं अक्सर उठा लेता हूँ। वो कहती है कि रहने दीजिए, मैं उठा रही हूँ, मैं उठाकर ले आती हूँ वगैरह। वो बेचारी कोताही नहीं करती, लेकिन मेरे इस अंदाज से दिल में खुशी दाखिल होती है और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता है। अगर मैं ऑर्डर करता रहूं कि ये उठा लो, ये कर लो, तो वो कर तो लेगी, लेकिन ऐसा करने में मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे अगर किसी का कोई कागज़ देना हो तो बजाय हुक्म देने के आकर कागज़ ले जाओ, अक्सर मैं खुद ही उठकर दे आता हूँ कि वो बेचारा काम में लगा हुआ होगा, मैं उसको बुलाऊं, वो अपना काम छोड़कर आए। इससे बेहतर है कि मैं ही उठकर दे आऊं। ऐसा करने से अगर मेरी शान में फ़र्क आता होता तो ये लाखों मुझसे मोहब्बत करने वाले ना होते। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सवाल, शोहर का रात देर तक लाइट जलाकर मुताला करना कैसा है? जवाब, मियाँ को मुतालए का शौक़ है, ये लाइट जलाकर मुताला कर रहा है और बेचारी बीवी को सख्त नींद आ रही है, लेकिन इस रोशनी की वजह से वो सो नहीं पा रही और दांत पीस कर पड़ी है कि अगर मियाँ को बोलूँगी तो लड़ाई हो जाएगी और बाद औक़ात लड़ाई हो भी जाती होगी, तो ऐसा करना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। याद रखिए, किसी भी कमज़ोर या मातहत पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं है, अगरचे वो हाकिम ही क्यों ना हो। दूसरों को तकलीफ़ देकर अपनी आखिरत दाव पर लगाने के बजाय ऐसी जगह मुताला करें जहाँ किसी को तकलीफ़ ना हो। सवाल, बीवी अपने शौहर को कहे कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और तुम मुझसे कम पढ़े लिखे हो, क्या इस तरह कहकर वो इसकी तजलील कर सकती है? जवाब, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, ये कहने से शौहर का दिल दुखेगा और औरत अपना घर तुड़वा लेगी। इसके पास कागज़ की लिखी हुई सनद होगी, लेकिन बाद औकात शौहर के पास तजर्बा होता है, अगरचे वो पढ़ा हुआ ना हो। बहरहाल, इस तरह किसी को बोलना सख्त दिल आज़ारी का सबब हो सकता है। मैं अपने पास मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाने वाले इस्लामी भाइयों को देने के लिए रिसाला रखता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी को रिसाला देने लगता हूँ तो दूसरा इस्लामी भाई बोलता है कि इनको उर्दू नहीं आती। मैंने ऐसों को समझाया है कि इस तरह ना बोला करें, क्योंकि इससे सामने वाले का दिल दुख सकता है। ज़ाहिर है, पाकिस्तान में रहने वाले को उर्दू ना आती हो तो ये ताज्जुब की बात है। हाँ, अगर वो खुद बोल दे कि मुझे उर्दू नहीं आती तो अलग बात है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बेहतरीन अंग्रेज़ी जानते हैं, आम पढ़ा लिखा शख्स उनको देखकर हैरान रह जाए, लेकिन वो उर्दू से ना आशना होते हैं। शोहर को गाली देना कैसा? सवाल, बीवी का अपने शोहर को मजाक में गाली निकालना कैसा? जवाब, गाली निकालने को हदीसे पाक में फिस्क यानी गुनाह कहा गया है। अगर बीवी शोहर को गाली निकाले तो ये और भी सख्त हो जाएगा, क्योंकि इसने तो शोहर की तालीम और इताअत करनी है। लिहाजा औरत शोहर को गाली निकालने पर तौबा करे, शोहर से मुआफ़ी मांगे और आइंदा ऐसा करने से बचे। सवाल, बीवी को नमाज की तरफ लाना हो तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नीज, बीवी को गाली गलौज से रोकने का भी कोई हल बता दीजिए। जवाब, बीवी को नरमी, प्यार और शफकत से नमाज की तलकीन करनी चाहिए और नमाज पढ़ने के फजाइल, नीज ना पढ़ने की वईदें सुनानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब फैजाने नमाज मौजूद है। बीवी को बिठाकर इससे दर्स दें और घर में मदनी चैनल चलाएं। इस तरह बीवी का दिल नर्म पड़ेगा और वो इंशा अल्लाहुल करीम नमाजी बन जाएगी। अगर शोहर शोर शराबा करता रहेगा तो बीवी को जिद चढ़ेगी और फिर मुश्किल है कि वो नमाजी बने। जहां तक गाली गलौज का ताल्लुक है तो मुसलमान को गाली देना गुनाह का काम है। शौहर और बीवी तो मुसलमान होने के साथ साथ करीबी रिश्तेदार भी हैं और उनके सिले रहमी के भी मुआमलात हैं। अगर शौहर बीवी को गाली देता है तो उसे चाहिए कि तौबा करे और मुआफ़ी भी मांगे। गाली गलौज तो वैसे भी अच्छे लोगों का काम नहीं है, जबकि बीवी तो रफीक़ए हयात यानी ज़िंदगी की साथी है। अगर बीवी शोहर को गाली देती है तो ये और बुरी बात है, क्योंकि शोहर का उस पर बड़ा हक है। यूं शोहर को गाली देना और बड़ा जुर्म हो गया। ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि तौबा करे और शोहर से मुआफ़ी भी मांगे। गाली गलौज गंदे लोगों का काम है। गाली देने वाले से लोग भी नफरत करते हैं। बाज़ गाली देने वाले ये समझते हैं कि लोग उन्हें सलाम करते हैं, हालांकि वो सलाम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपके शर से बचे रहें कि यार इसको मुंह कहाँ लगाएं, बस सलाम कर दिया और निकल गए। गाली देने वालों को तौबा करनी चाहिए, और चूंकि गाली देने से सामने वाले का दिल भी दुखता है, इसलिए जिन्हें गाली दी है उनसे मुआफ़ी भी मांगें। सवाल, बदगुमानी में पड़ जाने और हुस्ने जन ना रख पाने के असबाब बयान फरमा दीजिए। जवाब, इसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं, जैसा कि इस बारे में दीनी मुतालआ की कमी होना, माहौलियात का असर, बुरी सोहबत, समझाने वालों की कमी, और सबसे बढ़कर ये कि बदगुमानी से होने वाले नुकसानात की तरफ तवज्जो ना होना, क्योंकि बाज़ औक़ात बदगुमानी खून खराबा भी करवा देती है या घर ही उजाड़ देती है। जैसे अगर शौहर बीवी से बदगुमानी करे या बीवी शौहर से बदगुमानी करे तो इसके नतीजे में दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे और बात लड़ाई झगड़े बल्कि इससे भी आगे चली जाएगी और यूं पूरा घर तबाह हो सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह फतावा रजविया में फरमाते हैं, बदगुमानी रिया से कम हराम नहीं है। हमें तो हर मुसलमान के बारे में हुस्ने जन रखना चाहिए। मुसलमान के हर अमल को अच्छे गुमान पर महमूल करना यानी उसके बारे में अच्छा गुमान कायम करना वाजिब है। इसी तरह बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हु से मरवी एक वाक़या है कि हज़रत ईसा अली सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देख लिया तो फरमाया, क्या तूने चोरी की है? उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने चोरी नहीं की। हालांकि आप अली सलाम ने अपनी आँखों से उसे चोरी करते हुए देखा था। आप अली सलाम पर खौफ खुदा का गलबा हुआ और आपने फरमाया, मैं मान लेता हूँ मेरी आंखों ने धोखा खाया है। हमें भी चाहिए कि दूसरे मुसलमानों के लिए हुस्ने ज़न कायम करें और बदगुमानी से बचें। सवाल, बाज़ लोग कहते हैं कि औरत को चांद की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? जवाब, अगर कोई मुकद्दस महीना है, जैसा कि हमारे यहाँ माहे जश्ने विलादत का चांद होता है, तो रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देते हैं। अगर मुबारकबाद देने वाला महरम है तो मुबारकबाद दे सकता है, जैसे भाई बहन को, बेटा माँ को और शौहर बीवी को मुबारकबाद दे सकता है। सवाल, क्या औरत इद्दत में मदनी चैनल देख सकती है? जवाब, औरत इद्दत में मदनी चैनल देख सकती है। मदनी मुजाकरे में शरीक मुफ्ती साहिब ने फरमाया, अगर औरत इद्दत में मदनी चैनल घर के अंदर ही देखती है तो जिन सूरतों में दीगर इस्लामी बहनों को देखने की इजाज़त है तो उन्हीं सूरतों में ये भी देख सकती है। मदनी चैनल देखने का इद्दत से यूं कोई ताल्लुक नहीं है कि इसकी वजह से इद्दत में कोई फ़र्क पड़ता हो। इद्दत असल में एक वक्त का नाम है जो तलाक या मौत की सूरत में शुरू हो जाता है। इद्दत में बुनियादी तौर पर औरत पर दो हुक्म होते हैं, एक ये कि बिला ज़रूरत शरई घर से बाहर नहीं जा सकती, दूसरा ये कि जीनत यानी सिंगार, मेकअप वगैरह करना औरत के लिए ममनू हो जाता है। शौहर खर्चा ना दे तो बीवी क्या करे? सवाल, अगर शौहर अखराजात ना दे तो बीवी को क्या करना चाहिए? जवाब, बीवी को नान, नफका और मकान देना शौहर पर वाजिब है, नहीं देगा तो गुनहगार होगा। ये सब चीज़ें ना देने की सूरत में बीवी मुकदमा भी कर सकती है, काजी उसको खर्चा दिलवाएगा, लेकिन अब ऐसा अंदाज नहीं रहा, इसलिए ऐसी सूरत में आपस में मिलकर खानदान वाले तय कर लें और तरकीब बना लें। केस यानी मुकदमा करेंगे तो घर बैठ जाएगा और सब मुश्किल हो जाएगा, साथ ही रुसवाई और बदनामी भी होगी। शोहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी के जायज़ अखराजात जिनको पूरा करने का शरीयत ने कहा है उन्हें पूरा करे। सवाल, अगर शोहर तंग दस्त हो तो बीवी को क्या करना चाहिए? जवाब, शोहर की हौसला अफजाई करे और तसल्ली दे कि आप फिक्र ना करें, ऐसे मौके पर फरमाइश ना करें क्योंकि फरमाइश भी आजमाइश में डाल देती है और बाज़ औक़ात शोहर हराम की तरफ रुख कर बैठता है। बीवी अगर शोहर को फ्री हैंड दे यानी फरमाइशें करने से बचेगी तो शोहर को सुकून मिलेगा और वो टेंशन फ्री यानी जहनी दबाव से फारिग भी रहेगा। अल्लाह पाक करेगा कि बरकतें भी आ ही जाएंगी। अपने नसीब में जो रोज़ी हो वो मिलकर रहती है, अवामी मुहावरा है, हर बहाने रोज़ी और हर बहाने मौत है। जौजा के तरके में शौहर का हिस्सा। सवाल, अगर जौजा फौत हो जाए तो उसके माल में से शौहर को क्या मिलेगा? जवाब, जौजा फौत हो जाए तो उसके माल में से सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक उसकी तजहीज़ व तकफीन और तदफीन का एहतिमाम किया जाए, फिर उसके बाद उसका कर्ज हो तो वो अदा किया जाए, फिर अगर उसने कोई जायज़ वसीयत की है तो उसके माल के तीसरे हिस्से से उसकी वसीयत को पूरा किया जाए, फिर उसके बाद जो माल बच जाए उसमें से शौहर को हिस्सा मिलने की दो सूरतें हैं। अगर जौजा का बेटा, बेटी या पोता पोती में से कोई ना हो तो इस सूरत में शौहर को कुल माल का आधा मिलेगा, और अगर जौजा का बेटा, बेटी या पोता पोती में से कोई हो तो इस सूरत में शौहर को कुल माल का चौथाई हिस्सा मिलेगा। चुनाचे पारा 4 सूरतुन निसा की आयत नंबर 12 में खुदा रहमान का फरमाने आलीशान है, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल्लहुन्न वलद फइन काना लहुन्न वलदुन फलकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना मिन बाद वसीयती यूसीना बिहा औदैन। तर्जमाए कंजुल ईमान, और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं उसमें से तुम्हें आधा है, अगर उनकी औलाद ना हो फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से तुम्हें चौथाई है, जो वसीयत वो कर गईं और दैन निकाल कर। सवाल, क्या शौहर को बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करना लाजमी है? ये सवाल शोभा फैजान मदनी मुजाकरा की तरफ से कायम किया गया है, जबकि जवाब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल्ला आलिया का अता फरमुदा ही है। जवाब, कुरान पाक में इरशाद है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, पारा 5 सूरह निसा आयत 34, तर्जमा कंजुल ईमान, मर्द अफसर हैं औरतों पर, तो मर्द औरत पर हाकिम है, लिहाजा औरत को मर्द की इताअत और फर्मा बरदारी करनी है। इसके बजाय अगर औरत चाहे कि शौहर मेरी माने और मेरा फर्मा बरदार हो तो ये दुरुस्त नहीं। जायज़ दरख्वास्तें और फरमाइशें, मसलन तरह तरह के खानों, नित नए डिज़ाइन के कपड़ों वगैरह वगैरह की तलब पूरी करना शौहर पर वाजिब नहीं, वाजिब सिर्फ नान नफका वगैरह है। अलबत्ता अगर शौहर दीगर फरमाइशें भी पूरी करता है तो ये बीवी पर एहसान होगा, क्योंकि ये सवाब का काम है। लिहाजा शौहर को हत्तल इम्कान जायज़ ख्वाहिशात पूरी करनी चाहिए। नोट, आइंदा सफहात पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताब गीबत की तबाहकारियां से गीबत की कुछ मिसालें नकल की गई हैं, जिन्हें मौजू की मुनासिबत से यहाँ शामिल किया जा रहा है। ये बातें न सिर्फ मियाँ बीवी की दुनियावी जिंदगी में जहर घोल देती हैं, बल्कि उनकी उखरवी जिंदगी के लिए भी नुकसान और खसारे का बाईस है। ये सवाल शोभा फैजान मदनी मुजाकरा की तरफ से कायम किया गया है, जबकि जवाब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया का अता फरमुदा ही है। गीबत नाजायज व हराम है कि 17 हरूफ की निस्बत से मेके जाकर ससुराल के मुतालिक की जाने वाली गीबतों की 17 मिसालें। सास हर वक्त मुंह फुलाए रहती है, बात बात में कीड़े निकालती है, मेरा पकाना उसे पसंद ही नहीं आता, मेरी तबीयत खराब हो तो सास कहती है बहाने बनाती है, दूसरी बहू को बड़ा चाहती है, मेरे साथ पराया सलूक क्यों करती है, बड़ी अक्खड़ और सख्त मिजाज है, मुझ पर हर वक्त अपना हुक्म चलाती रहती है, शौहर को मेरे खिलाफ भड़काती है, सास मुझसे काम बहुत करवाती है, खुद सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है, माँ बेटी मिलकर मेरी बुराइयां करती रहती हैं, सास ने शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया है, अब मैं उन्हें सोना बनकर भी दिखाऊं वो मुझे पांव की जूती ही समझेंगे, कई कई घंटे उनका इंतजार करती हूं, आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, उनकी कल मुखी तलाकन बहन की भी खिदमतें करनी पड़ती हैं, मेरी फुला तलाकन नंद बड़ी मुंह फट है, तलाक ली मगर जोर नहीं गया, सुना है उसने अपने मियाँ को एक दिन भी सुख नहीं दिया था, आखिर बेचारा तलाक ना देता तो क्या करता। मुसलमान की आबरू रेजी हराम है के 22 हरूफ की निस्बत से ससुराली रिश्तों की गीबतों की 22 मिसालें। मेरी बहन को उसकी सास तंग करती है, बहनोई घर का खर्चा नहीं देता, कमा कर सब माँ को दे देता है, दामाद मेरी बेटी पर जुल्म करता है, अपनी माँ की बातों में आकर बार बार घर से निकाल देने की तड़ियां देता है, माँ के चढ़ाने पर बात बात पर मारता है, तलाक की धमकियां देता है, रात देर तक घर से बाहर रहता है, दिन को देर तक सोता रहता है, हड हराम है, दूसरी औरत के चक्कर में है, इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, सुना है नशा वगैरह भी करता है, हमको बहुत मनहूस आदमी से पाला पड़ गया है, एवें यानी बस ऐसा ही है, जहरीला सांप है, इसके दिल में दगा है, उजड़ गंवार जाहिले मुतलक है, बेटी की सास जादूगरनी है, बहू ने तावीज गंडे करवा कर मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए बेटा मेरी एक नहीं सुनता। गीबत करने वाला बरोज़े कयामत कुत्ते की शक्ल में आएगा कि 37 हुरूफ की निस्बत से मंगनी या तलाक होने पर की जाने वाली गीबतों की 37 मिसालें। अगर मंगनी टूट जाए या तलाक वाकई हो जाए तो अक्सर शैतान फरीकैन को कान पकड़कर रिंग में लाता और वो नाच नचाता है कि अल अमान वल हफीज, गीबतों, तोहमतों, इल्ज़ाम तराशियों, ऐब दरियों, दिल आज़ारियों, बदगुमानियों और बदकलामियों का एक तूफान खड़ा हो जाता है। हर खूबी भी अगर मंगनी टूट जाए या तलाक वाकई हो जाए तो अक्सर शैतान फरीकैन को कान पकड़कर रिंग में लाता और वो नाच नचाता है कि अल अमान वल हफीज, गीबतों, तोहमतों, इल्ज़ाम तराशियों, ऐब दरियों, दिल आज़ारियों, बदगुमानियों और बदकलामियों का एक तूफान खड़ा हो जाता है। हर खूबी भी ऐब बनकर रह जाती है। हर फरीक अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर झूठ बोलता है, हालांकि बरसों से घर चल रहा होता है, मगर जब दो खानदानों में जंग छिड़ती है तो फरीके मुकाबिल को माद अल्लाह बदअकीदा तक कह दिया जाता है। ऐसे मौाक़े पर की जाने वाली गीबतों की 37 मिसालें मुलाहजा हों। लड़की वालों की तरफ से गीबतें, शराबी था, जुआरी, लुच्चा, लफंगा, लोफर, आवारा था, 420 था, कमाता नहीं था, घर का खर्च नहीं देता था, सब पैसे माँ के हाथ में दे देता था। उसने कभी घर को घर नहीं समझा, सास रोटी नहीं देती थी इसलिए लड़की पल्ले से खाती थी, बहुत जालिम लोगों से पाला पड़ा था, फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, हमारी लड़की को बेकसूर मारता था, हमारे सामने बहुत अकड़ता था, उसका सारा खानदान नीच है, हमारे मयार के लोग ही नहीं थे, हमारी लड़की पर सौकन लाना चाहता था, हमें जान से मारने की धमकियां देने लगा था, हमारी लड़की को बदनाम करना शुरू कर दिया था, कमीने ने आखिर अपनी जात दिखाई। लड़के वालों की तरफ से गीबतें, लड़की का चाल चलन सही नहीं था, बहुत सारे आशना बना रखे थे, घर में जबान बहुत चलाती थी, इसकी माँ ने खाना पकाना भी नहीं सिखाया था, बर्तन भी मांझने नहीं आते थे, कपड़े भी बराबर नहीं धो सकती थी, बहुत झगड़ालू थी, चोरियां करती थी, तावीज गंडे करवाती थी, जादूगरनी थी, चुड़ैल थी, हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया था। इसकी माँ घर आकर हमको कोसने दे गई थी, हमको इसने बदनाम कर दिया है, हमने गरीब समझकर तरस खाया था, मगर इसका तो दिमाग आसमान पर पहुंचा हुआ था, वगैरह वगैरह। घर की बात बाहर करने वाला कम ज़ात है, अल्लाह पाक से हिदायत खैर की दुआ है। यकीनन जो गीबतें वगैरह करता है वो बहुत ही बुरा बंदा है। आइए आपको एक अच्छे बंदे की हिकायत अर्ज करूं। चुनाचे एक बुजुर्ग रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, एक साहिब राज यानी पेट के मजबूत आदमी का निकाह हुआ, मगर दोनों के माबैन जहनी हम आहंगी का फुकदान था, यानी कमी थी। किसी तरह उसके दोस्त को इस बात की भनक मिल गई। उसने पूछा, तुम्हारे घर का क्या मसला है? उस साहिब राज ने जवाब दिया, मैं इतना कम जात नहीं कि घर की बात किसी को बता दूं। बात आई गई हो गई, बिलाखिर घर ना चल सका और तलाक देनी पड़ गई। जब उसके दोस्त को पता चला तो बोला, वो तो अब तुम्हारी बीवी नहीं रही, बता दो क्या मामला था? उस समझदार शख्स ने जवाब दिया, अब तो वो मेरे लिए गैर औरत हो चुकी है और किसी गैर औरत के मुतालिक मैं कैसे बात करूं? अल्लाह हमको फजल से अकले सलीम दे, शर्मो हया तुफैले रसूले करीम दे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जौजा को पानी पिलाने पर अज्र। हजरत इरबाज बिन सारिया रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब कोई शख्स अपनी बीवी को पानी पिलाता है तो उसे इसका अज्र दिया जाता है। तो मैं अपनी बीवी के पास आया और उसे पानी पिलाया, फिर उसे भी वो हदीसे पाक सुनाई जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी।